मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 15 मई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सभी के साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं आजाद सरोज, आप सिया उत्तर प्रदेश से हैं, नेमी चंद देवरा, आप जोधपुर राजस्थान से हैं, और उपेंद्र गौतम, आप बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं। तो आजाद, नेमी चंद और उपेंद्र, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि हालांकि गर्मी बहुत तेज है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अगर हमारे अंदर ठंडक है तो वो बाहर की गर्मी को सम कर देगी और बाहर की गर्मी अंदर के ठंडक का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और इस लिहाज से मैं मानकर चलता हूं कि आपने इन अपने दो दिनों को केवल इसी आधार पर बर्बाद नहीं होने दिया होगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। और खासकर यह बात उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है जो सिविल सर्विस के भी जो प्री के एग्जाम होने हैं 18 जून को, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, आपको समय की कीमत को समझना होगा। समय ही एक ऐसा तत्व है जो एक बार चला जाता है, बाद में कभी वापस नहीं आता। आप कह सकते हैं कि मैं आज का काम कल कर लूंगा। ठीक है, आप आज का काम कल कर लेंगे, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि आपने इसके बारे में सोचा है कि जो कल का काम है उसको कब करेंगे। फिर आप सोचेंगे कि नहीं, कल मैं दुगना कर लूंगा। तो दोस्तों, आपका एक्स्ट्रा आउटपुट जो हो सकता था दुगना करने पर तो दुगने परिणाम आने चाहिए ना, लेकिन दुगना करने पर परिणाम दुगने नहीं आ रहे हैं, पहले जैसे ही आ रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमने तो आज बड़ी मेहनत की, हमने तो दुगनी मेहनत की है। फिर हमारे दिमाग में अपेक्षा आ जाती है कि परिणाम भी दुगने आने चाहिए, लेकिन वो आते नहीं है। तो मित्रों, पूरे देश का मौसम अभी काफी गर्म है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने अंदर एक संतुलन बनाए रखिए, एक शांति बनाए रखिए, उसकी ठंडक बाहर की गर्मी का मुकाबला करती रहेगी और आप अपना काम करते रहें। इसी मानसिकता से अब एटलीस्ट आपको 1 महीने 3 दिन चलते रहना पड़ेगा, तब तक जब तक कि 18 जून की शाम 6 न बज जाए। राइट मित्रों, में 6 थोड़ा सा मार्जिन लेकर के आपको टाइम लेकर के चल रहा हूं। आपकी एग्जाम मुझे मालूम है कि उससे थोड़े पहले ही खत्म हो चुके होंगे। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के न्यूज एनालिसिस पर। कल की खबरें आप लोगों ने पढ़ी ही होंगी। मैं खासकर 2-3 टॉपिक पर आपका ध्यान, टॉपिक की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दोस्तों, एक आपने मानसून की खबर पढ़ी कि सुनी कि किस तरह से हमारा जो मानसून है, और उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया था दक्षिण पश्चिम मानसून, उसने अपने नियत समय से 3 दिन पहले इन एडवांस अंडमान निकोबार में अपनी दस्तक दे दी है। देखिए, अब एक छोटी सी खबर है। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट क्या करता है? देखिए, या तो आपको मानसूनी हवाओं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि ये मानसूनी हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं, कैसे कैसे बनती हैं, कैसे चलती हैं, या स्थायी पवन है या अस्थायी पवन है या लोकल वायु है, स्थानीय भी होते हैं। एक तो है स्थायी, दूसरा है सीजनल, और तीसरा है स्थानीय। 3 तरह की हवाएं होती हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इसे दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहा गया है? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि वो सबसे पहले ये खबर में क्यों आई कि वो अंडमान निकोबार में पहुंच गया है? फिर इसका क्या कारण है कि कहा गया कि भारत में जो गर्मी का, जो वर्षा का जो मौसम है, वर्षा जो ऋतु है कह लीजिए, वो 1 जून से मानी गई है। न्यूज में आपने सुना है कि वो 1 जून से मानी गई है, और लग रहा है कि केरल में 1 जून से मानसून, 1 जून को मानसून आ जाएगा। ये क्यों कहा गया है? क्या आपको फिर ये मालूम है कि अगर केरल में मानसून 1 जून को आ जाता है तो ये मध्य प्रदेश में 15 जून को क्यों आता है, और फिर दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते वो 27-28 जून क्यों हो जाता है, इतना लेट क्यों हो जाता है? अगर चलिए आपको ये भी मालूम है तो क्या आपको मालूम है कि फिर ये मानसून केरल पे इतनी ज्यादा वर्षा क्यों करता है, और फिर दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते इसकी वर्षा कम क्यों हो जाती है, ये क्यों इतना कंजूस हो जाता है कि उतनी वर्षा नहीं कर पाता जितने की वो केरल के तट पर लुटा देता है अपने आप को। ये देखिए सब, ये जितनी भी बातें मैंने अभी बताई हैं, इन सब के केंद्र में न्यूज ही है। मतलब आपने न्यूज सुनी और न्यूज सुनने के बाद जब आपने अपना विश्लेषण करना शुरू किया कि मुझे इनमें से क्या क्या मालूम है क्या क्या नहीं मालूम है, तब सही मायने में आपको वो चीजें दिखाई देती हैं, वो चैप्टर्स दिखाई देते हैं, वो पंक्तियां दिखाई देती हैं कि नहीं मुझे इसके बारे में भी मालूम करना है, मुझे इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और मानसून की जानकारी तो आपकी होनी ही चाहिए फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। मैं अपने डेली ऑडियो लेक्चर में भी बीच बीच में आपसे इसके बारे में चर्चा करता रहूंगा, लेकिन आपको चाहिए कि आप इसकी बहुत अच्छी तैयारी कर लें। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि जो मानसूनी हवाएं हैं ये क्या है, इन्हें हम पछुआ हवाएं कहेंगे, वेस्टर्लीज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, या हम इसे व्यापारिक पवन कहेंगे, ट्रेड विंड्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, या हम इसे ध्रुवीय पवन कहेंगे, ध्रुवीय हवाएं कहेंगे जिसे हम पोलर विंड्स कहते हैं, क्या कहेंगे, या हम इसे जल समीर कहेंगे, या हम इसे स्थल समीर कहेंगे, या हम इसे पर्वतीय समीर कहेंगे, या हम इसे घाटी समीर कहेंगे, क्या कहेंगे? तो ये सारी चीजें आपके दिमाग के बहुत क्लियर होनी चाहिए। सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए मित्रों ये जरूरी है। हालांकि मैंने आपके सामने प्रश्नों के अंबार लगा दिए हैं एक छोटी सी न्यूज को लेकर के, और हो सकता है कि आपको थोड़ी सी परेशानी भी महसूस हो रही हो, मुझ पर थोड़े से नाराज भी हो रहे हो कि मैं ये क्या कर रहा हूं। देखिए मैं आपको प्रिपरेशन का तरीका बता रहा हूं। ये जितने भी प्रश्न हैं इन सब के उत्तर बहुत सरल हैं, बहुत ही सरल हैं। और सरल इस मायने में है कि अगर आपको मानसूनी हवाओं की जड़ मालूम है, आप इसके जड़ से परिचित हैं, तो आपको सब कुछ मालूम है, आप इन सब के उत्तर दे देंगे। हालांकि हो सकता है कि इनके उत्तर सीधे सीधे किताब में आपको लिखे हुए न मिले, और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन तो इसी तरीके से होती है दोस्तों कि उत्तर सीधे सीधे नहीं मिलते, वो तो हमें अपने दिमाग में ढूंढना पड़ता है, यूं कह लीजिए कि दिमाग में क्रिएट करना पड़ता है। और उसी के नमूने के बतौर मैंने अभी कुछ उत्तर, कुछ प्रश्न आपके सामने रखे हैं। दोस्तों इसके बाद जो एक और खबर थी वो थी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में जो अभी अंतर्द्वंद चल रहा है, वो सब आप देख रहे हैं, और मैं समझ रहा हूं कि इसको तो आप सब बड़े इंटरेस्ट, बड़े मजे के साथ सुन रहे होंगे और अच्छे तरीके से परिचित भी होंगे। एक समय था मित्रों कि आप पार्टी ने हिंदुस्तान के युवाओं के मन में, सच पूछे तो पूरे हिंदुस्तानियों के मन में एक बड़ी जबरदस्त संभावनाएं पैदा की थी, बहुत जबरदस्त आशा का दौर आया था कि नहीं अब जो है हमारा देश शायद भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कर रहा है। आप देखिए कि मतलब ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं थी अरविंद केजरीवाल जी की कि 2011 के आसपास वो सीधे सीधे अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े और 2014 के चुनाव में वो चीफ मिनिस्टर बन गए दिल्ली के, हालांकि लंबे समय तक नहीं रह पाए, और इसके बाद 2015 के चुनाव में तो उनकी 70 में से 67 सीट्स, और वो भी कहां, दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां का जो तबका है वो इतना पढ़ा लिखा वर्ग है, उसने आम आदमी पार्टी को सर माथे पर लिया, और उसी पार्टी में 2 साल के अंदर इस तरह की स्थितियां आ गई हैं, करप्शन के चार्जेस, अंदरूनी फ्रिक्शंस के चार्जेस, विवाद के चार्ज, क्या क्या आरोप नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अभी सारी बातें आरोप के ही स्तर पर हैं, हम नहीं जानते हैं प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आरोप का लगना भी एक कम बड़ी बात नहीं है। मित्रों इस मायने में आप केंद्र सरकार को आप देखिए, केंद्र सरकार को 3 साल हो गए हैं, राइट, इनसे कम ही समय है, लेकिन केंद्र सरकार में अभी तक जो उच्च स्तरीय जो पद हैं, है ना, देखिए ब्यूरोक्रेसी में अखबारों में आप पढ़ते रहते हैं, वहां रिश्वत लेते पकड़ा गया और उनके पास धन से अधिक संपत्ति है तो छापा पड़ा, ये सारी खबरें हम पढ़ रहे हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल है, और सच पूछे तो जिनमें पॉलिटिशियंस भी शामिल है, वो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जो सत्ता में हैं, जो हमारे मंत्री हैं, जो कैबिनेट में हैं, मंत्रिपरिषद में हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर, आप देखिए कि उनके खिलाफ कम से कम अभी ऐसे चार्जेस नहीं लगे, ऐसे आरोप नहीं लगे हैं। और कभी कभार जो थोड़े बहुत लग भी गए, कभी कभी बीच बीच में आपने देखे होंगे, तो वो सस्टेन नहीं कर पाए, यानी कि उनकी कोई जड़ें नहीं थी। तो यहां दो स्थितियां बिल्कुल आपको अलग अलग दिखाई दे रही है ना। मैं आपकी केवल एनालिटिकल पावर के संदर्भ में बता रहा हूं, क्योंकि जब हम किसी चीज की एनालिसिस करते हैं तो याद रखिए, एनालिसिस करने का एक बहुत अच्छा आधार यह होता है कि हम सापेक्ष में कोई और चीज लेकर के चले, यानी कि अगर तुलना करने के लिए हमें कोई चीज मिल जाती है तो एनालिसिस करने में बहुत सुविधा मिल जाती है, और फिर ब्रांचेस दिखाई देने लगती है एनालिसिस करने की, कि अच्छा ठीक है, इस पर बात की जा सकती है, इसके आधार पर हम बात अपनी कह सकते हैं, ये कसौटी है, इस पर हम इसे परख सकते हैं, ये सुविधा हमें मिल जाती है। तो केंद्र सरकार अभी आपके पास इस रूप में एक सुविधा है पैरेलल की, आप रख कर देख सकते हैं। मित्रों, सच पूछे तो सोच करके देखिए कि ये जो एक राजनीति के प्रति जो एक आशा बंधी थी, खासकर युवाओं में लेकर के, वो आशा यहां धूमिल हो गई। और दूसरी तरफ आप वर्ल्ड लेवल पर देखिए कि जो कनाडा के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं जस्टिन मिस्टर, वो बिल्कुल यंग हैं, बेहद लोकप्रिय हैं। और अभी फ्रांस में देख लीजिए कि अभी जो जीत करके हमारे नए जो वहां के राष्ट्रपति आए हुए मिस्टर मैक्रों, वो 39 ईयर्स के हैं, और देखते हैं वो युवाओं के हाथ में, मतलब सोचे कि कनाडा का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, कनाडा की जो मुद्रा है उसकी कीमत अमेरिकन डॉलर से भी थोड़ी सी ज्यादा है, कनाडा में भी डॉलर ही चलता है, उसको कैनेडियन डॉलर कहते हैं, मतलब कनाडा के लोगों का जीवन स्तर अमेरिका से थोड़ा सा बेहतर ही है, कमजोर नहीं है। और फिर फ्रांस देखिए, फ्रांस यूरोप के तो एक डेवलप्ड कंट्री में माना जाता है, और विश्व की जो 5-7 जो बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से फ्रांस एक है, वहां के वो राष्ट्रपति हैं 39 ईयर्स के। तो युवाओं के हाथ में सत्ता तो आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि युवा जिनके हाथ में सत्ता आ रही है वो किस तरीके से जनता के विश्वास को बनाए रख पाते हैं। बनाए ही रख पाने की चुनौती नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाने की भी चुनौती है। तो मित्रों, अब आप देखिए कि छोटी सी एक बात थी अरविंद केजरीवाल जी की सूचना थी, मतलब एक न्यूज में एक बात आई थी, और उसके ऊपर जब आप विचार करने लगेंगे तो फिर वो आपकी एनालिटिकल पावर धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी। और ये प्रैक्टिस मित्रों आप सबको करना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि ये प्रैक्टिस आप लोग करें, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में तो यही क्षमता आपका बेड़ा पार करेगी मित्रों, दूसरा कोई उपाय नहीं है, चाहे यह आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर आपको सिविल सर्विस के सिलेक्शन की जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें आप अपना नाम देखना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी करें। तीसरी जो खबर थी दोस्तों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी नर्मदा सेवा यात्रा के समापन समारोह में पहुंच रहे हैं, अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में है, और अमरकंटक मुझे जाने का मौका मिला है, वहीं से नर्मदा जी निकलती है, बहुत ही छोटी सी धारा है, मतलब इतनी पतली धारा है कि आप देखकर यकीन नहीं करेंगे कि बाप रे बाप, यही नर्मदा आगे चल करके ये बन जाती, जैसे आप गंगोत्री जाकर के देखिए, फिर भी गंगोत्री की जो धारा है, मैं तो गंगोत्री वाले उस पॉइंट पर भी गया हूं जिसे गोमुख कहते हैं, तो वहां तो जो पानी निकलता है ना फोर्स के साथ निकलता है, मतलब उसमें एक तीव्रता होती है ना, एक आवेश होता है, लेकिन तब भी आप नहीं सोच सकते कि ये गंगा आगे चलकर, ये धारा आगे चलकर के इतनी बड़ी गंगा बन जाएगी। लेकिन नर्मदा तो बिल्कुल जैसे कि आप मंदिर वगैरह में देखेंगे ना, कि मान लीजिए कि शिवलिंग, वहां शिव जी का मंदिर है, शिव जी के मंदिर पर शिव जी को आप जल चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने के बाद वो मंदिर से वो पानी धीरे धीरे बह करके जो बाहर जाता है, लगभग लगभग उसी फॉर्मेट में नर्मदा निकली है, आगे चल करके कितना विशाल रूप ले लेती है। जो सभी नदियों का संकट है मित्रों, वही नर्मदा का भी संकट है। आपको मालूम है कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने गंगा यमुना को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया है, मतलब जीवंत इकाई, मतलब एक व्यक्ति का दर्जा दिया है एक अपने डिसीजन में, लगभग लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात है, शायद हम लोगों ने इस पर बात की थी। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने भी यही कहा है कि वो विधानसभा से पारित कराएंगे एक संकल्प, और उसके तहत नर्मदा को वैधानिक व्यक्ति का दर्जा देंगे। और वैधानिक व्यक्ति का दर्जा देने के बाद यह है कि नर्मदा को भी मान लिया जाए, जैसे आप और मैं हैं, हमारे अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, ठीक उसी तरह से उस नदी के भी राइट्स हो जाएंगे। और वो नदी भी अपना केस कोर्ट में दायर कर सकेगी। लेकिन यहां फिर एक प्रैक्टिकल बात आती है दोस्तों, जैसे आप देखिए कि उत्तराखंड में 1-1.5 महीने हो गए दर्जा दे दिया गया है, लेकिन कहीं इसकी बहुत ज्यादा चर्चा देश में नहीं हुई है। यहां तक कि उत्तराखंड में भी इसको लेकर के अभी अखबार में मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इसको लेकर के कोई बहुत उत्साह नहीं है कि कोई बहुत बड़ा काम हो गया है, बहुत बड़ी बात हो गई यार, अब हमारी नदी का संरक्षण हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कभी कभी तो लगता है कि दर्जा देने की जरूरत ही नहीं है। लोक चेतना तो सबसे प्रबल चीज होती है। जो लोक चेतना गंगा यमुना को मैया मान रही है, नर्मदा को मैया मान रही है, नर्मदा को शंकर की पुत्री मानती है और ये बात कहती है कि नर्मदा का कंकर हर कंकर शंकर, जो लोक चेतना इतनी प्रबल हो, इतना जुड़ाव मानती हो नदी से, तो उसको वैधानिक अधिकार की जरूरत ही क्या है। और फिर वैधानिक अधिकार की इसलिए भी जरूरत नहीं कि नदियों के को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए, करने के लिए तो छोड़िए, रखने के लिए दुनिया भर के कानून बने हुए हैं। आप उसमें गंदे नाले का पानी नहीं डाल सकते, आप उसमें उद्योग का सीधे गंदा पानी नहीं डाल सकते, आपको पानी ट्रीट करके फिर आपको डालना होगा, आप उन्हें लागू कर दीजिए ना। अगर हमारा प्रशासन उन कानूनों को ही लागू कर दे तो अपने आप में हमारी नदियां स्वच्छ हो जाएंगी, और ये उसके हाथ में है। तो जो लोक चेतना होती है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। और डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी लोक शक्ति ही तो है, लोक समर्थन ही तो है। अगर कोई आज मुख्यमंत्री बना है, कोई आज प्रधानमंत्री इस देश का, तो इसलिए क्योंकि लोक शक्ति ने उसे चुना है। तो इसी लोक चेतना ने नर्मदा मैया को मां के रूप में चुन रखा है, बात खत्म हो गई। इसी नर्मदा से जुड़ी हुई कि ब्रह्मा जी के आंखों से 2 बूंद आंसू टपके थे, उसमें एक नर्मदा नदी बनी और एक सोन नदी बनी, 2 नदियां। ब्रह्मा के आंसू की बूंदे कितनी पवित्र है, और आप कहते हैं कि इस नर्मदा नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे भैया, जब जिस गंगा के जल को, जिस नर्मदा के जल को आप इतना पवित्र मान रहे हैं कि वो आपको पाप से मुक्त कर देती है, तो कम से कम उस जल की पवित्रता को तो बनाए रखिए, उस जल को तो ऐसा बनाए रखिए कि इसमें डुबकी लगाई जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि लोक चेतना का समर्थन अगर सरकार के पास है, प्रशासन के पास है, तब तो वो हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है, फिर तो उसको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत हो रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्रोनिक कैपिटलिज्म का मामला है, ये कुछ करप्शन का मामला है, या और कुछ और ही मामला है, सोचने की बात है। तो मैं आपका ध्यान इधर दिला रहा हूं। तो मित्रों, न्यूज में तो बस इतनी ही बातें थी। जो दूसरी खबरें हैं, मैं सोच रहा था कि आज आपसे मैं एक तो चाइना में बीजिंग में जो सम्मेलन चल रहा है बेल्ट रोड फोरम का, जो वन रोड वन बेल्ट को लेकर के चल रहा है, इस पर बात करूंगा, वक्त नहीं है, हम लोग फिर कभी बात करेंगे इस पर, हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, श्रीलंका भी हमारे प्रधानमंत्री जी होकर के आ गए हैं, तो उस पर भी मुझे थोड़ी सी आपसे बात करनी थी, और एक अलग किस्म की डिप्लोमेसी की शुरुआत हुई है, इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। और आप लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि मैं कह देता हूं और बात नहीं करता हूं, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मुझे अभी रामानुजाचार्य जी के सेकेंड पार्ट पर बात करनी है, मैं बाकायदे लिस्ट बनाता हूं और जैसे ही समय मिलेगा मैं डेफिनेटली अपना वादा पूरा करूंगा। और मित्रों, एक ना अखबारों में आपने पढ़ा होगा, वायरस रैनसम वेयर वाना क्राई, ये एक जिसको लेकर के अभी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, ये कंप्यूटर वायरस के रूप में, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये बहुत ही सामान्य सा परिचय। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मित्रों आप अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। एक सूचना आपको देना चाहूंगा फ्रेंड्स कि मैंने कुछ दिनों पहले ही आपसे MIS के बारे में चर्चा की थी, जिसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने सुप्रीम कोर्ट में किया था। उसका जो फुल फॉर्म है, मैंने सी की जगह उस समय कोर्ट शब्द कहा था, और जब मैंने मैच किया तो अनफॉर्चुनेटली टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोर्ट शब्द ही लिखा हुआ है, फिर स्टूडेंट्स ने इधर ध्यान दिलाया, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो कोर्ट नहीं है, वो केस है, सी फॉर केस। तो वो बन जाएगा इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, है ना। तो ये जरा ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में कोर्ट शब्द रह जाए और आप उसे ही ओके कराएं और आपको नुकसान उठाना पड़े। तो मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं। आशुतोष शुक्ला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, अनूप चंद्र नई दिल्ली से, माधव कुमार पटना बिहार से, दिनकर द्रोण, तृप्ति साहू, नीतीश कुमार बेगूसराय बिहार से, सोनू श्रीनेत, पंकज कुमार देवकिशन गुर्जर भीलवाड़ा राजस्थान से, मनीष कुमार गया बिहार से, निशांत बेज बरुआ तिनसुकिया असम से और दीपक राजगीर बिहार से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस अब डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।